सर अथा हम आप सबके श्री चरणों को प्रणाम करते हैं। श्री चरण चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रोता वृंद के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपने को बहुत हीन कहते हैं। यह कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिए सत्य नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए उनका प्यार भी सत्य है। वास्तव में श्रोता भक्तों की भक्ति से प्रभावित होकर वक्ता के कुछ अच्छी कथ निकाल जाती है। जो भगवान के प्रेमियों के साथ बैठने का सौभाग्य मिलता है, स्वाभाविक ही भगवान कृष्ण की चर्चा निकलती है। हम लोग जैसा अभी सुन रहे थे, श्रील प्रभुपद भागवत सप्ताह की परंपरा चल रही है भारत में या देश में, उसे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि सात दिन में संपूर्ण भागवत पर बोलते हैं और उससे कृष्ण भावना का विकास लोगों में हो पाता है, भगवान कृष्ण को ठीक से नहीं जान पा रहे, इसीलिए प्रभुपाद जी उससे असंतुष्ट थे। परंतु जैसे मैंने सुना है कि श्री प्रभुपाद अपने प्रिय शिष्य जसोमती नंदन प्रभु को कहे थे कि तुम भागवत सप्ताह को तुम करो, उसे सुना रहे थे, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे जीवन में स्वाभाविक भगवत सप्ताह कहने की प्रवृत्ति आ गई। धीरे धीरे भक्त लोग इसे अक्सर कर रहे हैं, तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आप इतने बड़े बड़े वैष्णव मन भाव से बैठकर मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति के मुख से भागवत सुनाते हैं, यह मेरा सौभाग्य है। तो मुझे कोई योग्यता नहीं है, फिर भी हमारा याका यह धर्म है भगवान विष्णु के विषय में सुनना, हम लोगों का स्वरूप है, स्वभाव है कृष्ण भक्ति का विकास करना, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। बोलने से पहले मैं अपने इष्टदेव श्री राधारस बिहारी जी के कमलों का स्मरण कर रहा हूं, जिन्होंने इस कथा को बांध से यहां तक खींच कर दिया। यह कथा बांध होने वाली थी, लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्रति प्रश्न का भाव है कि अंदराश है। मैं नैरोबी से है तो पूछता चला कि राधारस बिहारी जी चरण कमल में खड़ा है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं इस बात से खिन्न था कि इस्कान जुहू से दूर कथा हो रही है। आते ही मुझे यह संवाद मिला कि राधारस बिहारी जी ने अपने घर में कर लिया कथा, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं भगवान की मेरे प्रति जो ममता है उसका पुनः रियलाइजेशन किया। तो वे हमें अपना समझते हैं निश्चित, तो उन्हीं की कथा है। और श्रील प्रभुपाद जी ने राधा रास बिहारी नाम दिया है, बड़ा बड़ा रहस्यमय नाम है भगवान का, यह रहस्यमय लीला है। तो मैं रास लीला तक तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उसके पहले भगवान की गोचारण लीला अपने भाई श्री बलराम जी के साथ जो वृंदावन में हुई है, ब्रज में हुई है, उसी के विषय में। कौमार और चारण का अर्थ होता है गौओं के छोटे छोटे बच्चों को, बछड़ों को वे चराते थे, और उनको चराने वाले बच्चे भी उसी अनुपात में छोटे छोटे थे। कृष्ण पंचम वर्ष तक बछड़ा चराए, चार वर्ष के थे तो बछड़ा चराने गए और केवल एक वर्ष चराए, और एक वर्ष में एक बहुत विचित्र घटना घटी, ब्रह्म मोहन लीला। ये सब लीलाएं मैं कई बार कह चुका हूं। अब पौगंड लीला की कथा प्रस्तुत की जा रही है। ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ ब्रजे, कथा कहने वाले परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी हैं और सुनने वाले राजर्षि परीक्षित, दोनों एक स्तर के हैं। भगवान ने गर्भ में ही महाराज परीक्षित को बचाया था और इनके पितामहों से भगवान का बहुत प्रेम था। इनके पितामह अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, भीमसेन, ये तो भगवान के पार्षद ही थे जिनके साथ भगवान ने बहुत सी लीलाएं की। जितना वे द्वारका में नहीं रहे उससे ज्यादा हस्तिनापुर में रहे। भगवान श्री कृष्ण की समग्र लीलाओं का आकलन किया जाए तो देखा जा सकता है कि वे 90% हस्तिनापुर में रहे और जगह बहुत कम रहे। इतना प्रेम था उनका अपने पांडवों के साथ, और उन्हीं पांडवों के वंशधर राजर्षि परीक्षित हैं, तो वे परम प्रेम के साथ भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं और सुनाने वाले जन्म से ही परम अनासक्त कृष्ण में परम आसक्त सुखदेव गोस्वामी है। यहाँ श्री सुखव वाचक का भी बहुत महत्व होता है। कौन व्यक्ति बोल रहा है, हमारा चित्त वहां जाना चाहिए। इस कृष्ण कथा को कौन बोल रहा है, तो श्री सुखव बोल रहे हैं, श्रील सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो भगवान वेद व्यास देव की तपस्या से उत्पन्न किए गए थे, बद्रिकाश्रम में तपस्या किए भगवान वेद व्यास देव, और यही आशा रखकर कि मैं उसे भागवत पढ़ाऊंगा और भागवत पढ़ लेगा तो मुझे सुनाएगा। लेकिन जन्म लेते ही सुखदेव गोस्वामी घर से चल दिए, तो भगवान वेद व्यास देव हा बेटा हा पुत्र कहकर पीछे किए, लेकिन वे नहीं लौटे। बाद में भागवत के श्लोकों को सुनकर वे पढ़ने के लिए लौटे। तो श्रीमद् भागवतम भगवान वेदव्यास देव के जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, इस जगत में सबसे बड़ा दान उन्होंने दिया, और अपनी इस कमाई को परम स्नेह के साथ उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को दिया। जैसे हम लोग इस जगत में देखते हैं किसी भी स्नेहवान पिता के विषय में, वह अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन अपने पुत्र को देता है, स्वाभाविक। तो सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान वेदव्यास देव ने सबसे बड़ा धन दिया अपने सभी शिष्यों को छोड़ करके। और सुखदेव गोस्वामी के जीवन में भागवत कहने और सुनने के अलावा और कोई कार्य नहीं। तो श्री सुखव वाचा हमेशा आएगा प्रसंग में। तो सुखदेव गोस्वामी बिना प्रश्न के ही यह कथा प्रारंभ कर रहे हैं। ततश्च पौगंड वयः श्रुतौ व्रजे, छठवें वर्ष से लेकर दसवें वर्ष की उम्र को पौगंड अवस्था कहते हैं। कौमार अवस्था, पौगंड अवस्था, कैशोर अवस्था, युवावस्था, ये सब अवस्थाएं हैं शरीर की। तो वैसे भगवान श्रीकृष्ण नित्य नव किशोर हैं, परंतु ये पौगंड लीला कर रहे हैं। पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पौगंड लीला में भी कैशोर प्रकट किए थे, वे किशोर अवस्था के थे, और एक ही समय में वो कुछ भी रह सकते हैं, उनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब 100 वर्ष के हुए उस समय माता देवकी ने उनको अपने गोद में लेकर दूध पिलाया, माता के लिए भी बच्चा थे। तो पौगंड अवस्था में भी किशोर अवस्था की लीलाओं का वर्णन है। बभूवतुस्तव पशुपाल सम्मतव, तव मतलब ये अनिर्वचनीय श्रीकृष्ण और बलराम। श्रीकृष्ण और बलराम के लिए तव शब्द का प्रयोग किया गया संस्कृत में, उनकी संज्ञा पहले नहीं दी गई, सर्वनाम का प्रयोग है। तव मतलब जिनका वर्णन करना हमारी वाणी से बाहर की बात है, वे परम सुंदर, परम विदग्ध दोनों भाई पशुपाल सम्मतौ बभूवतु, पशुपाल सम्मतौ बभूवतु। सबसे पहले वे बछड़ा चराते थे, लेकिन बाद में उनको ये अनुमति मिल गई, ठीक है तुम गौ चरा सकते हो, गाय चरा सकते हो। थोड़ा सा बड़ा हो गए, और माँ यशोदा से भगवान कृष्ण हमेशा कहा करते थे, माँ अब मेरे शरीर का बल बढ़ गया है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं गाय बन बन में घूमकर चरा सकता हूँ, मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम मुझे भेजो अन्य गोपों के साथ भेजो। तो माँ कहती थी, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे शरीर में बहुत कम शक्ति है, तुम बच्चा हो, छोटे हो, अभी मत जाओ। तो समय बीतते बीतते जब छठे वर्ष में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए, तो उन्होंने जिन बछड़ों को चराया था वे बछड़े अब गौओं के साथ चरने जाने के लिए छोड़ दिए गए। पहले बछड़ा अलग चरते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उनको भी भोजन चाहिए, केवल दूध पर नहीं रहते हैं। तो गौएं दूर जाती थी वन में चरने के लिए और बछड़े नजदीक में ही गौओं से ठीक विपरीत दिशा में जाते थे। नहीं तो गौओं से और बछड़ों से भेंट होते ही क्या होगा ये सभी जानते, तो सारा दूध पी जाएंगे। और गौओं में बड़ा स्नेह होता है, पिला देती है। तो बछड़ों को भी चराया जाता था, तो पहले कृष्ण बलराम बछड़ा चराए, तो वे बछड़े धीरे धीरे सयाने हो गए और मुक्त स्तन्य हो गए। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं मुक्त स्तन्य, माता के दूध है पीने के योग्य अब नहीं रहे, माताएं दूध नहीं पिला देती क्योंकि अब दूसरा गर्भ धारण की थी। तो इन बछड़ों को गौओं के झुंड में किया जाने लगा, लेकिन एक भी बछड़ा जा नहीं रहा था, कोई नहीं जा रहा था, लोग बलात हांक रहे थे बछड़ों को गौओं के साथ, लेकिन सब भाग कर कृष्ण के पास आ जाते। कृष्ण जिनको चराए थे, कृष्ण का संग जिनको मिला था, वो कैसे कृष्ण के बिना रह सकते। कृष्ण का नाम जपने वाला भक्त कृष्ण के बिना नहीं रह सकता है, तो उनके साथ साथ घूमने वाले बछड़े कैसे कृष्ण के बिना रह सकते। इतना आकर्षण है भगवान में, इतना आनंद है कि कोई भी उनका संग छोड़कर जा नहीं सकता। अंत में परेशान हो गए गोप हाँकते हाँकते, एक भी बछड़ा नहीं। और जो गोप सखा थे, जो बचे थे, वे भी जब पौगंड अवस्था के हुए तो उनको कहा गया कि अब गाय चराने जा सकते हैं, उनको कहा गया आप गौए चराने जाओ, तो वे लोग भी नहीं जा रहे थे, कहते थे कृष्ण चलेगा तब, हम कृष्ण के साथ ही चराएंगे, चाहे गाय चराना हो चाहे बछड़ा चराना हो, हम कृष्ण से शून्य होकर के नहीं जाएंगे, कृष्ण के बिना नहीं जाएंगे। बड़ा एक तमाशा लग गया ब्रज में, अब क्या किया जाए। तो अंत में नंद महाराज को सभी गोपों ने बुलाया कि नंद महाराज आप अपने पुत्र को कृष्ण और बलराम को गौ चराने के लिए कहिए, नहीं तो ये बछड़े बिना चरे रहेंगे यहाँ। और गौओं को भी बहुत आकांक्षा थी कि कृष्ण हमारे साथ चले। नंद बाबा अन्य लोगों से मिले और अन्य लोगों ने गारंटी दिया कि हम लोग कृष्ण की रक्षा करेंगे, हम लोग इसको कभी भी गाय हंकने के लिए नहीं कहेंगे, केवल साथ में रखेंगे, साथ में जाए, बाकी गाय चराने की जिम्मेवारी हम लोगों पर है, आप इसको विदा कर दीजिए, अधिक समय तो हम लोग इसको गोद में रखेंगे, कभी कभी वन की शोभा देखने के लिए अगर उत्सुक होगा तो हम लोग साथ में रखेंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, खोह में या कंदरा में जमुना के तट पर, हम लोग इसको अकेले नहीं जाने देंगे, आप छुट्टी दे दीजिए। तो वह दिन था गोपाष्टमी का दिन, शुक्लाष्टमी कार्तिकेतु स्मृता गोपाष्टमी बुधई, तब दिनाद वासुदेव भूत वत्सप गोप पूर्वंत वत्सप। विद्वान लोग कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी कहते हैं, तो उसी दिन भगवान कृष्ण और बलराम गोप हुए। गवाम पाल कह गोप, जो गौओं का पालन करने वाले हुए तो उनको गोप कहे, पहले वत्सप थे, वत्सप तो मतलब पालन करने वाले, पहले बछड़ों का पालन करते थे अब गोप हुए। तो वही सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बहु वतुष्टौ पशुपाल सम्मतौ, अब कृष्ण बलराम को अनुमति मिल गई गोचारण की कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन। और बहुत तरह से मंगल उपचार किया गया, माँ यशोदा ब्राह्मणों से आशीर्वाद का वाचन कराई, जिसको मंगलाचरण कहते हैं, और भीख मांगी आप ऐसा आशीर्वाद है कि हमारे दोनों बच्चे सकुशल घर लौटे, क्योंकि वन बहुत खतरनाक स्थान होता है, और इतने सुकुमार बच्चों को भेज देना वन में, जसदा के वन में परायण गई ले। एक कवि गाता है कि जिस दिन कृष्ण गाय चराने गए तो मानो ऐसा लगा जसोदा जी को जैसे मेरा प्राण चला गया बाहर वन में। इस तरह उनको अनुमति मिली। और नंद बाबा ने सभी गोपों से पूछा क्या आप लोग ऐसा मानते हैं कि कृष्ण बलराम वन में जाने लायक हैं, तो वे लोग कहे हाँ हाँ। हम सब रक्षा करेंगे इन दोनों की और इनको छूट देनी चाहिए। तो उस दिन चले गोचारण करने के लिए, पौगंड वजह स्थित पौगंड अवस्था में प्रवेश किए थे, लेकिन कैशोर का धर्म उनमें उद्भासित हो रहा था। किशोर अवस्था में शरीर की जो दशा होती है वैसी भगवान की दशा थी। तो गाश्चारयंत सखरी समम पदय वृंदावनम पुण्यमती व चक्रत सखरी समम, अपनी सखाओं के साथ गाश्चारयंत गौए चराते हुए दोनों भाई वृंदावन को अतीव पुण्यम कर दिए। चक्रत वृंदावन तो ऐसे स्वाभाविक ही परम सुंदर है, परम सुखमय है, परम पावन है, परंतु कृष्ण बलराम के चरण कमलों के विन्यास से वो अतीव पुण्य हो गया, अतिशय पावन। इसका अर्थ यह है कि श्री कृष्ण और श्री बलराम के चरण पहले छोटे छोटे थे और छोटे छोटे चरणों में उनके चरण चिन्ह बहुत नहीं उभरते थे धरती पर, बहुत सूक्ष्म चरण चिन्ह थे, इसलिए पृथ्वी की उतनी शोभा नहीं होती थी और एक सीमित जगह में वो घूमते थे बछड़ा चराते हुए। इसलिए वृंदावन की अन्य भूमि, मतलब पूरे ब्रजमंडल की जो अन्य भूमि थी, वो तड़प रहे थे कि ये हम पर कब पैर रखेंगे, और वृक्ष रो रहे थे, पक्षी रो रहे थे कि कब कृष्ण आएंगे हमारे पास, आएंगे आएंगे। तो अब कृष्ण को उन्मुक्त अवसर मिल गया पूरे ब्रजमंडल में घूमने का। गौओं के लिए घास की अपेक्षा होती है और आप जानते हैं कि गौएं चरने लगती हैं तो एक जगह के घास को बहुत जल्दी खत्म कर देती हैं, इसलिए उनको दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। तो पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में श्री के वृंदावन रहता है। यहां शब्द है वृंदावनम पुण्यमती व चक्रते, वृंदावन को अतिशय पवित्र करने लगे। जिस दिन भगवान जा रहे थे गोरण में तो मां जरोदा ने कहा कि वन में काट होंगे, इसे बच्चे को उपाना जूता पहनाना चाहिए। तो जूता को लाया गया, बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे जूते कृष्ण और राम को लाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि मां गोप जाति खा, हम गौओं के पालक हैं, हम गौओं के दार हैं, जब गौओं को जूता नहीं है तो हम तो नहीं पहनेंगे, क्योंकि हम गौओं को चराने जा रहे हैं, हम अनुग हैं, हम गौ के अनुग हैं। तृण चरानुगम श्री निकेतन, त्रिचर के अनुग तृण पशु को कहते हैं, हम उनके अनुगाम ऐसा हम जूता नहीं लाएंगे, हम दास। इस तरह के बलराम बिना जूता के घूमते थे पूरे ब्रज में, इसे उन चरणों की छप से अलंकृत होकर वह ब्रज भूमि अक्षय पाव है। अतीव शब्द कितना पावन, इसको संस्कृत में मुक्त न्याय कहते। मुक्त प्रग्रह न्याय का अर्थ होता है कोई एक लंबी रस्सी है आपको छोड़ दिए हैं, वो जा सकती, किससे अधिक पवित्र, कितना पवित्र, वैकुंठ से अधिक पवित्र, अथवा पहले जितने पवित्र था उससे और अधिक पावन होने लगा, और अधिक पावन होने लगा। वृंदावन तो स्वर ही पावन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिन्ह पाकर छपा करके और अधिक धन्य हो गया। अभी आज के युग में हम देखते हैं कुछ वैष्णव जन वृंदावन में ब्रज में भगवान के चरणों की छाप अपने ललाट पर शरीर में धारण करते हैं और वे अपने को भाग्यशाली मानते हैं। तो जहां छाप भगवान का चरण पड़ रहा है, वो वृंदावन कितना भाग्यशाली है, कितना पावन है, इसको सहज समझा जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी पहले यह ध्यान कर कृष्ण बलराम अपने सखाओं साथ वृंदावन की भूमि को और अक्षय पावन बन गए और उन्हें घूमना रहता था कि गाह चायंत गौ जैसे जैसे चरती थी, जहां जहां जाती थी उधर उधर जाना पड़ता, गौ एक जगह तो रख नहीं सकते थे, इसलिए गोचरण के बहाने श्री कृष्ण ब्रजभूमि अलंकृत कर रहे। तो कृष्ण बलराम पहले से बढ़ती इच्छा थी, लेकिन उन्हें अनुमति मिली और जाते। तो दो अश्वों में कृष्ण बलराम की लीला कहकर अब भगवान श्री कृष्ण की लीला कह रहे हैं। तन माधव वे मुदीर गोपैर्गृणद भी शोभान्वितः
पशून पुरस्कृत्य पशव्यमाविशत विहतु काम कुसुमा करम वनम।
भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों की सामान्य रूप से एक अभिला का है, वृंदावन को पवित्र करने लगे। अब मधुर चित्र कृपरायण श्रीकृष्ण की लीला का विश्लेषण कर रहे हैं। माधव, श्री कृष्ण को माधव कहते हैं। माँ का अर्थ होता है लक्ष्मी और भावमती माव लक्ष्मी के पति, थोड़ा मा अर्थ हुआ राधा और भवने पति श्री राधा रानी के प्रियम भगवान श्री कृष्ण, अथवा श्लेष से अर्थ कर रहे हैं। माधव का अर्थ बसंत भी है, जैसे वसंत ऋतु किसी वन में प्रवेश करता है तो वह उद्भासित हो जाता है, खिल जाता है, पुष्प फल वृक्ष सब प्रसन्न हो जाते हैं, वसंत के आते हैं। तो माधव के वृंदावन में प्रवेश करते ही वृंदावन पूरा, यह श्लेष अर्थ है, बहुत सुंदर हो गया। तो माधव वेणु उदीरयन, यह श्री कृष्ण का स्वभाव है वृंदावन गोचारण करने में। वेणु उदीरयन, ईरयन का अर्थ है जाना और उ का अर्थ है जोर से, जोर से उजे ध्वनि से। गौए बिगड़ रहे थे इधर उधर, तो उनको चुटी करने के लिए, आनंद देने के लिए, अथवा एक जगह इकट्ठा करने के लिए या एक दिशा में ले जाने के लिए प्राय बांसुरी बजाया करते थे। और गोचारण में ही नहीं, गौए तो अपनी गति से चरती थे, लेकिन कृष्ण का यह एक अपना आनंद है, वो स्वयं वेणु बजाते रहते थे। तो देव उदीर तो गोपेर गणत स्वजसो बलान्वित, श्री कृष्ण बांसुरी बज रहे हैं और उनके सखा गोप वृंद उनके यश को गा रहे हैं। स्वजस, श्रीकृष्ण का जो तत्कालिक यश है उसी गा रहे हैं। इतना सुंदर रूप है कृष्ण का, कितना सुंदर मुकुट है, कैसी सुंदर चाल है, गोप सखा केवल इसे वर्णन करते हैं, अथवा इसके पहले जो लीला कर चुके ब्रज में उसी को गा रहे हैं। और उनके गान पर वाद्य क्या बज रहा है, श्रीकृष्ण का वेणु वादन। हम लोग भी जब कीर्तन गाते हैं तो कोई न कोई भक्त मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, लेकिन वृंदावन में जब गोप सखा गाते हैं तो वाद्य बजा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण बजाते हैं बड़े स्वर स्वर में। गोपेर गृह सजसो बलांतर, बलराम जी के भी जस गान करते हैं गोप सखा, उस बलराम जी भी अनु बजाते हैं। श्री भक्त में यह सर वर्णन है, कृष्ण और बलराम दोनों एक हाथ असरी बजाते हैं और दोनों में कंपटीशन होता है कौन अच्छा बजाए, और दोनों मुरंग धारण करते हैं, दोनों के मुकुट एक जय। कभी कभी श्री बलराम भी हल धारण करते थे, वो भी ब्रज में तो की नहीं, ब्रज में वे बांसुरी और वेद के अलावा कुछ नहीं लिए। तो श्री कृष्ण और बलराम केवल इतना ही होता था कि बलराम गोरे थे और ये श्रेय साधे थे, तुलसी चितवन नहीं देखते थे, टेढ़ी चाल से नहीं चुके थे, श्री कृष्ण का सीधी चाल से चलते थे, वो तो झुके हुए आगे पीछे देते हुए गिरवाड़ी करते हुए चल रहे हैं, इधर देख रहे हैं, कहीं और संकेत रहे हैं, कहीं और कभी जगह नहीं चलते हैं, इसीलिए उनको भंग कहते हैं। तीन जगह से टूटा हुआ भंग, श्री भंग मतलब ये है। तो श्री कृष्ण वर्ण में ये अंतर था, लेकिन उनकी लीलाक भेद में बलान्वित लिखा गया है, बलसार बल से जो श्री बलराम सार, अथवा एक बार सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि माँ यशोदा ने श्री बलराम को विशेष चेतावनी दी थी कि बेटा इसको कभी अकेला मत छोड़ना है, जहां ये जाए के साथ रहे, बहुत नटखट है, कैसे जगह पर चले जहां वन के भयान तो इसको खा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बेटा इसको कभी मत छोड़ना। माँ की काया दिख करके ही श्री बलराम जी कृष्ण की वायु रक्षा करते थे, जैसे आंखें पलकों की रक्षा करते, जैसे पहले आंखों की रक्षा करती, ऐसा साथ रात जहां पढ़ेंगे तो बलान्वित। और जिस दिन कृष्ण बलराम जी बिना ब्रज गए गोष्ठ में वन में गए, उस दिन कोई न कोई घटना होगी। जिस दिन गोप सखाओं की चोरी हुई थी उस दिन बलराम जी नहीं गए थे, जिस दिन काली नाग से ग्रस्त हुए उस दिन बलराम जी नहीं गए थे। तो बलराम जी का साथ में रहना बहुत आवश्यक था, बलराम जी का शरीर बड़ा हिष्ट पुष्ट था, बलवान था, और ऐसी लीला भी वे किए थे कि उन पर विश्वास होता था कि ये रक्षा करेगा कृष्ण। तो गोप सखा के साथ भगवान कृष्ण थे, तो श्री बलराम और कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे थे। पशुन पुरस्कृत्य पशव्य माविशत, पशुन पुरस्कृत्य पशुओं को आगे आगे करके भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ पशव्यम आविशद चरागाह में, पशुओं के हितैषी चरागाह में, मतलब पशु का हित किसमें है, जहां बहुत घास हो, जल हो और भूमि में कंटक कुश उभर खाभर न हो, उसको पशव्य कहते हैं। जहां पशुओं का हित हो, जहां पशु सुख से चर सके, वो पशव्य में दोनों भाई प्रवेश किए पशुओं को आगे करके। इसका अर्थ यह है कि पशुओं को चराने में कोई कष्ट नहीं था, पर्याप्त घास थी, पर्याप्त पानी था, इसलिए कृष्ण बलम को खेलने के लिए हमेशा टाइम है। ऐसा नहीं था कि गायों को चक्कर रखना है, इधर किसी का खेत है उसमें चली जाएंगी या उधर चले जाएंगी, कम घास है। पशु सब बता रहा है कि प्रचुर घास थी, पानी था, सुविधा थी, पशु अपनी गति से चर रहे थे, उनको चराने में कोई दिक्कत नहीं थी और कृष्ण बलराम को अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए पर्याप्त। विहर तो कहा कुसुमा कर वनम, वन प्रवेश किए कृष्ण की क्या इच्छा थी, भर्तु काम, विहार करने की इच्छा से प्रवेश किए, गोचार की इच्छा से प्रवेश नहीं किए। यहां यह सबूत हो रहा है गौ को चराना कोई प्रयास काम नहीं था, उतने आप चरेंगे ही, लेकिन अब विहर तो काम आसन विहार करने के लिए प्रवेश किए। कहा वनम, वन प्रवेश किए, ये प्रथम दिन ये का वर्णन किया रहा है। लेकिन इसको अति देशार्थ कहते हैं संस्कृत में, एक दिन की लीला का वर्णन करके प्रत्येक दिन की लीला का वर्णन किया जा रहा है, नमूना जिसको कहते हैं, इसको संस्कृत में अति देशार्थ कहते हैं और हिंदी में नमूना कहते हैं, एक दिन की लीला। इसी तरह से रोज गाते हुए सुनते हुए वन में प्रवेश करते हैं, वन की विशेषता बता रहे हैं सुदेव गोस्वामी। कथम भूतम वनम कुसुमाकरम, कुसुमा नाम आकरम, फूलों का खजाना। ब्रजभूमि स्पेशली वृंदावन पुष्पों का आकर था, सब प्रकार के पुष्प परम सुगंधी सभी ऋतुओं में खिलने वाले, और वे सब जगह हरे पड़े। और वास्तविकता यह है कि वृंदावन के पुष्प, वृंदावन के वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के स्वागत में उस दिन और अधिक खिल गए। ये वृंदावन का प्रत्येक जीव नित्य मुख है और श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझता है, तो अपनी योग्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पूर्ण सेवा अपने उपासना सब में रहते हैं, हमेशा सर्वदा श्री कृष्ण के प्रेम में होकर डूबे रहते हैं। और वहां गोप सखा हो या वृक्ष हो, मयूर हो या कोई पक्षी भौंरा, किसी को भी नहीं, सभी एक स्वरूप शक्ति अधीन रहते हैं, स्वरूप शक्ति विलास होते हैं। उष्मा करम बनम आवश्यक, पुष्पों के आंख में आकर मतलब खजाना निधि, जहां पुष्पों की निधि थी, अन्य प्रकार के पुष्प खिले थे, वन में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश की। वृंदावन का इस तरह से ध्यान करना चाहिए, कृष्ण बलराम सखाओं से नाचते हुए गाते हुए गौ को आगे करके और प्रवेश कर रहे। वृंदावन प्रवेश लीला और ब्रज और वृंदावन से लौटने पर ब्रज प्रवेश की लीला, दोनों का वर्णन बड़े बड़े भक्तों ने बहुत विस्तार से किया है। इसको गोष्ठ कहते हैं या ब्रज कहते हैं। चल सी जद ब्रदाचारयन वसु नलु न सुंदरम नाथते पदम, वे सवेरे चलते थे ब्रज से वन की ओर और शाम वन से ब्रज की ओर चलते थे। तो दोषा है कि उनकी लीला एक विचित्र प्रकार की होती थी, लेकिन सवेरे की जो लीला होती थी वो ब्रजवासियों के हृदय में शोक उत्पन्न करने वाली थी, क्योंकि कृष्ण जाते थे दूर, परंतु गोपखाओं के लिए यही लीला सबसे आनंददायिनी होती थी, क्योंकि उनके साथ खेलने का प्रारंभ होता था। परंतु गोपीजनों के लिए या यशोदा के लिए, महाराज आदि के लिए ये बहुत खत समय होता था सवेरे, क्योंकि कृष्ण जाते दूर। गोपियां कहती कि चलो सी जद चायन पशु नीन सुंदरम नाथ वदम, हे नाथ, जब कमल सुंदर, कमल श्री करोड़ों को सुंदर चरण कमल जब ब्रज से चलते हैं उनकी ओर क्या करने के लिए, असंचार परों को चराने के लिए, तो उस आपके चरणों में कांट गड़ रहे हैं, पत्थर गड़ रहे हैं, ये स्मरण करके हमारा चित्त मूर्छित हो जाता। वे अपने घर आती थी लेकिन चिंता होती थी कि नहीं कांट पैर रख रहे होंगे, ये पत्थर पर चल रहे होंगे, यह है प्रेम वासन। इसलिए वो विवाहिता कन्या नहीं थी, कृष्ण के साथ उनका कोई प्रकट संबंध नहीं था, लेकिन इन सब उपायों से रहित विशुद्ध निरुपाधि प्रेम उनका था। अपने घरों में रोते थे कि हाय कृष्ण की हो रहे, वही कृष्ण जब शाम को लौटते थे तो देख कर इतना सुख होता, इतना सुख होता था, उस समय आंखों पर पलकों का व्यवधान होता था, तो इसे वे विधात को ब्रह्मा को गाली दी कि तुम हमारे सुख में बाधा दे रहे, हमारी पलकें कृष्ण दर्शन में बाधा कही। जड उदीक्षता पक्ष कृत दृशाम, गोपियां यही कहती थी कि आंखों पर पग बनाने वाला ब्रह्मा निश्चित ही जड़ है, उसके चार मस्तक हैं, चार गुना दिमाग होना चाहिए, लेकिन वो दुख सृष्टि नहीं जानते। गोपियां प्रसाद करती थी कि कभी ब्रह्मा जी से भेंट हो जाएगी तो हम उसको सिखाएं कि तुमको ऐसी सृष्टि करनी चाहिए। ब्रज में जो लोग हैं उनको करोड़ों करोड़ों आंख दो और उस पर ये ढक्कन मत लगाओ, ये पलक मत लगाओ, और ब्रज से बाहर जो लोग कृष्ण को नहीं देखते हैं उनकी आंखों को शायद ये बंद कर दो, उनको देखने के लिए कोई असल अर्थ नहीं, विषय नहीं, तो नेगेटिव साइड का आराम ये तो नहीं करनी। लेकिन विधाता को हमेशा कोसती रहती प्रतिदिन, और कुपिता और निमी महाराज पर भी कुपित थी। निमी महाराज जल महाराज आंखों पर बैठे हैं और समस्त प्राणियों के पलक को वे उठाते हैं और गिराते हैं, ये उनका अर्ज है। तो महाराज निमी पर भी कुपित रहती थी और ब्रह्मा पर भी। ब्रह्मा ने पलक बना दिया और पलक बनने के बाद इसको गिराने उठाने का डिपार्टमेंट निमी महाराज संभाल लिया। ये दोनों गोपियों के गाली थे, ये मर के नहीं जाते हैं, ये क्यों ये था उठा लिए, हमेशा पलक ही रहनी चाहिए थी। तो उस आनंद का था कोई वर्णन कर सकता है, इस सुख के व्यवधान पलकें दुमन जैसा लग रहे थे, शत्रु जैसा लग रहे थे, इसकी कल्पना हम लोग नहीं कर पा सकते हैं, कितना सुख होता था, कितना प्रेम था। निरीक्षरन्तुं भगवान मनोदधे, अन्य शोभा का वर्णन करके भगवान के विहार आरंभ, विहार सामग्री का वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन कैसा है, मंजू घोषाली मृग द्विजाकुलम, जिनके मंजू घोष है, जिनकी बोलियां, जिनके स्वर अत्यंत मंजू हैं, अत्यंत मधुर हैं, कर्ण मधुर है, ऐसे भौंरे पशु और जीव रहते हैं। मृग कुछ ऐसे मृग होते हैं जैसे हरिण आदि, तो कभी कभी बहुत सुंदर भी और भौंरे, जहां फूल होता है वहां भौंरे अपने आप रहते हैं। तो पूरा वृंदावन भौंरे, कोयल, चातक या मयूर, ये सब पक्षी भरे थे, सारस। अभी 500 वर्ष पहले श्रीनिवासाचार्य ने वर्णन किया था वृंदावन का, कि षड गोस्वामी जन वृंदावन में घूमते थे तो सब जगह पक्षी बोलते रहते थे, बड़े सुंदर सुंदर मंगलमय पक्षी, और उनके घोष, उनके स्वर मंजू हैं। मंजू घोषाली मृग द्विजाकुलम, मंजव मनोहरा, घोषा जैसा, अलयश्च मृगाश्च द्विजाश्च, पक्षियों को द्विज कहते हैं क्योंकि वे दो बार जन्म लेते हैं। हम लोगों को जनेऊ दे करके द्विज बनाया जाता है क्योंकि पक्षी अपने आप बिना उपनयन संस्कार के द्विज है, एक बार अंडा के रूप में वे जन्म लेते हैं और दूसरी बार अंडा फोड़ करके जन्म होता है, इसलिए उनको द्विज कहते हैं। यहां द्विज शब्द, द्विज पक्षी, और अली भावरों को कहते हैं, मृग पशुओं को। तो यह सुख की सामग्री है, वहां भावरे हैं, विविध पक्षी, आकुलम, इनसे वृंदावन भरा पड़ा है। और वृंदावन में जो सरोवर हैं जगह जगह पर उनका वर्णन कर रहे हैं, उनका जल कैसा है, महन मन प्रख्यपय सरस्वता, महत मन महतान भगवत भक्ता नाम मनसा प्रख्यम सदृशम शीतल मधुर स्वच्छंदम पया जलम जस्वी सरा। वृंदावन के जो सरोवर हैं उनमें जल कैसा है, तो भगवत भक्तों के मन के समान शुद्ध, जैसे कृष्ण भक्तों का मन शुद्ध होता है वैसे वृंदावन के सरोवरों का जल शुद्ध है। श्रीमद् भागवतम में किसी सरोवर के जल की शुद्धता का वर्णन करने के लिए उपमा सब जगह यही मिली है, संत का मन जैसे निर्मल हो। संत का मन कैसा होता है, शीतल होता है, मधुर होता है और स्वच्छ होता है। शीतल का अर्थ यह है कि उसमें कभी भी गर्मी नहीं आती है, उस जल में कभी क्रोधित नहीं होता है। महात्माओं का मन ऐसा होना चाहिए कि कारण उपस्थित होने पर भी उनका मन क्रोधित न हो। जो क्रोधित हो जाता है वो महात्मा नहीं है, निश्चित है, कोई भी कारण अवश्य अप्राकृत धरातल पर क्रोध देखा जाता है, जैसे हनुमान जी में क्रोध देखा गया, भीमसेन में क्रोध देखा गया, ये भगवत विरोधियों को भगवत निंदा करने वालों को दंड दिए, हनुमान जी ने लंका को जला दिया, लेकिन वो स्तर दूसरा है, उसको भी शीतल ही कहेंगे, वहां गर्मी नहीं थी। बहुत जल्दी संसार में लोगों का मन गर्म हो जाता है, कभी कभी तो लोग कहते हमसे बात मत करो हमारा दिमाग गर्म है। क्यों, आप अपना दिमाग गर्म करके भस्म कर रहे हैं, ठंडा दिमाग रखना चाहिए ना, दिमाग ठंडा रखना चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहावत कहते हैं कि पैर गरम पेट नरम सिर को रखो ठंडा और इतने पर भी वैद आवे तो उसको मारो डंडा, मतलब वैद्यक शास्त्र है, पैर को गरम रखना चाहिए और पेट को हमेशा ढीला रखना चाहिए। ढीला का मतलब है नरम का मतलब कुछ दो चार कौर कम खाना चाहिए, तो टाइट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आदमी दो चार साल पहले ही मर जाएगा, आयु घट जाती है ज्यादा खाने से। तो पेट को नरम रखना चाहिए, कम खाना चाहिए और सिर को ठंडा रखना चाहिए। और इतने पर भी यदि घर में वैद्य आ जाए, अगर पैर को गर्म रखा जाए, पेट को नरम और सिर को ठंडा रखा जाए, तो कभी बीमारी नहीं हो सकती। तो महात्माओं का भक्तों का मन है शीतल होता है, तो क्रोध नहीं होता है। संसारिक धरातल पर मैं बोल रहा हूं, संसारिकता के माने उनके मन में कभी क्रोध नहीं होता। और दूसरी बात होती है बड़े मधुर, उनका मन बड़ा मधुर होता है। मधुर का मतलब होता है दूसरों को सुख देने की भावना, उनका दूसरों को हमेशा सुख देने की बात रहती है। ये प्राकृत धरातल की बात मैं कह रहा हूं, वैसे वास्तविक इसका अर्थ यह है कि उनका मन भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य से भरा रहता है, माधुर्य से भरा रहता है, इसलिए आनंदित रहते हैं। अन्य सांसारिक लोगों जैसा उनका मन दुखित नहीं रहता है कि मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण को हृदय में देखते हैं। संत सदैव हृदय से मिलो के अंति, अपने हृदय में कृष्ण को देखते हैं इसलिए उन्हें बड़ा सुख मिलता है, इसको मधुर कहते हैं, वो सुखी रहते हैं। और स्वच्छ, स्वच्छ का अर्थ होता है कोई उसमें आगंतुक गंदगी नहीं रहती, जैसे जल में आगंतुक गंदगी मिल जाती है तो गंदा हो जाता है। तो इस तरह से संसारिक लोगों के चित्त में अनेक कामनाएं होती हैं, ये अनेक कामना वासना ही ये डर्टी थिंग्स, ये गंदगी। लेकिन भक्तों का हृदय समस्त कामनाओं से शून्य होता है, इसलिए वो परम पावन होता है। तो ऐसे भक्तों का हृदय जैसा शुद्ध होता है वैसा शुद्ध जल वृंदावन के सरोवरों में, वही शीतल मधुर और स्वच्छ, कोई गंदगी नहीं और स्पर्श करने पर कुछ ठंडा और मधुर, पीने में अतिशय स्वाद, खारा नहीं कुछ नहीं। इस तरह से वृंदावन के सरोवरों के पानी हैं, और ऐसे सरोवर से हवा टकरा करके चलती थी, तो महान मन प्रक्षपय सरस्वता सतपत्र गंधिना बाते में, सरोवरों से जब हवा चलती है, वायु चलता है, तो कमलों की गंध को लेकर के चलता है, कमल की सुगंध। वृंदावन का पूरा वातावरण सुगंधित वायुमंडल से भरा रहता है अपने आप। अभी आपने सुना कुसुमा करम, और आगे एक अध्याय में भागवत में वर्णन किया गया है पद्मा करम। पद्म का आकर कमल का खजाना वृंदावन है, कमल चारों तरफ भरा पड़ा है, और कमल की सुगंध को लेकर हवा सब जगह फैली रहती है। यह है वृंदावन। तो हम लोग तो कभी ऐसे वातावरण में रहे नहीं, तो एक बंबई में इधर बैतरणी की हवा आती है, और हमने देखा है बांद्रा में एक बहुत बड़ी बैतरणी समुद्र में गिरती है, उसकी दुर्गंध कितनी फैली रहती है। लेकिन भागवत के आलोक से, भागवत पढ़ने से हम लोग समझ सकते हैं कि ऐसा भी अप्राकृत देश है जहां पर केवल कमल की सुगंध भरी पड़ी है, मालती पुष्पों की सुगंध है, जूही की सुगंध, केवल सुगंध सुगंध सुगंध। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी वहां के वायु को कह रहे हैं सतपत्र गंधि, सतपत्र गंधिना वातेन वातम जुष्टम, भरा पड़ा वृंदावन का पूरा वातावरण सतपत्र गंधी वायु से भरा पड़ा है। सतपत्र एक कमल का नाम है, सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ कमल होता है, उसको सतपत्र कमल कहते हैं। सतपत्र कमल एक विशेष जाति का कमल होता है, उसमें 100 पत्ते होते हैं, इसलिए उसको सतपत्र कहते हैं। उसकी सुगंध सबसे अधिक होती है, तो वृंदावन का जो वायु है वो शतपत्र कमलों की सुगंध से भरा हुआ है। तो ऐसे सुगंधित वन में जो पांचों इंद्रियों को आह्लाद देने वाला है, उस वन को देखकर निरीक्ष रंतु मनोदधे, भगवान के मन में भी उस वन में घूमने की विहार करने की इच्छा हो गई। यह भगवान शब्द है, भगवान जो सब तरह से परिपूर्ण है, जिन्हें कोई कमी नहीं है, वो भगवान भी वृंदावन के शोभा पर लुब्ध होकर के और उसमें रमण करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वृंदावन इतना महिमाशाली है, इतना आकर्षक है कि सबको आकर्षित करने वाले भगवान श्री कृष्ण को भी आकर्षित करता है। वृंदावन के सौंदर्य पर, उसके सौगंध पर लुब्ध होकर भगवान वहां विहार करने के लिए उत्सुक। तो पांचों इंद्रियों के विषय वृंदावन में है। पहले आपने सुना कि भावरे पक्षी आदि गुनगुना रहे हैं, तो यह कानों के लिए, इसको स्वर कहते हैं, सुंदर स्वर, बहुत सुंदर सुंदर बोली सुन रहे हैं। महान मन प्रख्य पया सरस्वता, और जल की मधुरता का, स्वच्छता का जो वर्णन है वो जिह्वा का विषय है, परम मधुर, पीने में अमृत के समान। वाते न जुष्टम सतपत्र गंधिना, और शीतल सुगंधित हवा के चलने से त्वग इंद्रिय सुखी होती थी, और गंध है उसमें इसलिए नासिका, और रूप तो आंखों के लिए प्रकट ही है। तो इस प्रकार पांच ज्ञान इंद्रियों के लिए वृंदावन पूर्ण रूप से समस्त संतोषदायक सामग्री प्रस्तुत करता है। ऐसे वन में भगवान अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रवेश करने पर श्रीकृष्ण जहां जहां जा रहे हैं, वहां वहां उनका स्वागत हो रहा है। तो कौन स्वागत कर रहे हैं? वृंदावन में रहने वाले वृक्ष, वहां के मयूर और हरिण, और इस तरह जो वन के जीव हैं, वही स्वागत कर रहे हैं। तो उस स्वागत का वर्णन सुखदेव गोस्वामी यहां कुछ श्लोकों में कर रहे हैं। सतत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनोरुभरेण पादयः स्पृशिखान वृक्ष वनस्पति मुदा स्मयन निवाह ग्रजमादि पुरुषः। सः अनिर्वचनीय महात्म श्री कृष्ण आदि पुरुषः, जो पुरुषोत्तम है, समस्त पुरुषों में जो श्रेष्ठ है, मतलब वैकुंठ बिहारी भगवान नारायण आदि से भी जिनमें अधिक सौंदर्य है, वैदग्ध है, मधुर में है, तत्र तत्र जहां जहां वृंदावन में जा रहे हैं, तत्र तत्र मतलब स्थाने स्थाने अर्थात सर्वत्र, जहां जाते हैं वहां सर्वत्र वृक्ष झुक झुक कर उनको प्रणाम कर रहे हैं। बड़े बड़े वनस्पति शब्द यहां दिया गया है, वनस्पति का अर्थ होता है वृक्षों में महान वृक्ष, वे सब झुक जाते थे, फलवान वृक्ष और पुष्प युक्त वृक्ष। जहां जहां श्री कृष्ण और बलराम जा रहे हैं सखाजन, तो वे झुक जाते थे वृक्ष, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष सभी चिन्मय है, उनका जड़ शरीर नहीं है, वृंदावन की भूमि स्वयं ही जड़ नहीं है, पूर्ण स्प्रिट है, स्वरूप शक्ति डिफ्यूज्ड हुई है, तो इसलिए सब कॉन्शस हैं, सब चेतन वस्तु। तो जहां जहां श्री कृष्ण जाते हैं वहां वृक्ष झुक जाते हैं, झुक करके वे अपना फल और फूल अर्पित कर रहे हैं, उनके पास जो कुछ भी है वो अर्पण कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावनेश्वर अपने वन में वृंदावन में विहार करने के लिए प्रवेश कर रहे हैं। वृंदावन जिनका है और वहां के जो भी चर अचर जीव हैं सभी कृष्ण के परम प्रिय हैं, और परम प्रिय श्री कृष्ण जब अपने घर में आ रहे हैं तो पूर्ण हृदय से सब कुछ न्योछावर करके वे स्वागत कर रहे हैं भगवान कृष्ण का। तो सब तत्र तत्रारुण पल्लव श्रिया फल प्रसूनुर भरेण पादयो, तो नए नए पत्ते हैं, जब वृक्षों में नए नए पत्ते आते हैं तो ये प्रारंभ में अरुण रहते हैं, अरुण का अर्थ थोड़ा थोड़ा लालिमा उनमें रखती है, अरुण पल्लव श्रिया उन वृक्षों की शिखाएं नए नए पत्तों से सुशोभित हैं, तो ऐसे नए नए पत्तों से युक्त वृक्ष फल और फूल के भार से झुक जाते हैं, तो पहले से ही कुछ झुके हुए थे फल और फूल के भार से, लेकिन जब वृंदावनाधीश वृंदावन के स्वामी जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तब ये वृक्ष और झुक जाते हैं कि इनका हाथ हमारे शिखा तक पहुंच जाए। तो कृष्ण भगवान छोटे छोटे हैं तो वे वृक्षों के फल को तोड़ सके इसके लिए वे झुक जाते, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, पादयो हस्पिशन, इतना झुकते हैं कृष्ण और बलराम के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। ये वृंदावन के वृक्षों का मर्म, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, यहां डार डार और पात में श्री राधे राधे हो, यह बिल्कुल सत्य बात है। भले बहिर्मुख लोग वृंदावन की महिमा को न समझें, लेकिन वृंदावन वास्तव में चिन्मय है, और वहां के जो जड़ चीजें हैं जैसे पत्थर है वो भी चिन्मय शक्ति का विलास है, स्वरूप शक्ति का विलास है, वहां न कोई तटस्था शक्ति है न बहिरंग शक्ति, केवल स्वरूप शक्ति, तो इस तरह भगवान विलास करते हैं। तो ये वृक्ष झुकते हैं चरणों में, चरणों में झुक करके अपने पास जो कुछ भी है अपना मधुर फल और अपना पुष्प चरणों में अर्पित करते हैं, कुछ है पुष्प तो झर जाते हैं भगवान के चरणों में, और कुछ ऐसे निकट कृष्ण के आ जाते हैं कृष्ण उसको तोड़ते हैं, फल को तोड़ते हैं तोड़ तोड़ करके और अपने शाखाओं को देते हैं, कहते हैं ये अच्छा है ना, ये अच्छा है ना, मतलब वृक्षों के मनोभाव को वे अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, ये कहते हैं कि मेरे प्रिय वृक्ष मैं जानता हूं कि तुम मुझे प्रेम से मुझे दे रहे हो, तो सखाओं से और श्री बलराम जी से भी बड़ी है। हम लोग देखे हैं गांव में जब कोई व्यक्ति अपने पुत्र का परिचय देता है अपने घर का अपने खेत का, तो अपने अतिथि से या मित्र आदि से कहता कि आपका पुत्र है, आपका खेत है, आपकी कार है, वास्तव में वृंदावन पूर्ण रूप से कृष्ण का स्वागत कर रहा है, कृष्ण के संबंध है श्री बलराम जी का और गोप सखाओं का, लेकिन कैसे वृक्ष कैसे समझे कृष्ण हमारी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए श्री कृष्ण अपने सखाओं से बातचीत करते हुए अनुमोदन कर रहे हैं। तो जहां भी कर जाते हैं वहां पर स्पृशत शिखान वृक्ष वनपति मुदा, वनस्पतियों के वृक्षों की शिखाओं से जब कृष्ण चरण का स्पर्श होता है फिर कृष्ण परम प्रसन्न हो जाते हैं और अपने अग्रज से इस प्रकार कहते हैं, सब जगह जहां जाते हैं तो अग्रजम आह, अग्र से बोलते हैं। अग्र का अर्थ है पहले, जब मैंने जन्म, जो श्रीकृष्ण से पहले जन्म लिए, पहले प्रकट हुए वे श्री बलराम जी। श्री बलराम जी के प्रति भगवान का गौरव भाव है, लेकिन इसके साथ साथ सख भाव भी है। एक कभी कभी अपने बिल्कुल बराबर का सखा मानकर व्यवहार करते हैं, सख है वही भेदभाव नहीं। और कभी कभी वे उनको अपना वह भाई मानकर उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। श्री बलराम जी का चरण, और श्री बलराम इसको स्वीकार करते हैं, ये बड़े भाई है ही। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि जब श्री बलराम जी लक्ष्मण जी के रूप में प्रकट हुए थे, तो भगवान श्री राम कभी कभी उन्हें नहीं मानते थे। तो वो अपने मन के अंदर लक्ष्मण जी सेवा नहीं कर पाते थे। जैसे जब कैकेयी ने कहा कि तुम लोग वन में जाओ, दशरथ से उसने वरदान मांगा, लक्ष्मण जी नहीं चाहते थे कि राम वन में आए। वे राम के पास आकर कहने लगे कि ये जो राजरथ हैं, ये अपनी पत्नी के गुलाम उनके बस में स्त्रैण है, तो ऐसे कामी पिता की आज्ञा को मान्यता नहीं है, आप अधर्म कर्म जा रहे हैं, धर्म नहीं है। अगर राजा दशरथ की स्वतंत्र आज्ञा होती तो ही मानता कि पिता के आदेश है, ये धर्म नहीं है। वैखरी के पीछे चलकर आप वन जाने के लिए कहते हैं, न्याय के अनुसार राज आपका है, आप राज्य के और आप नहीं जा सकते हैं। वो अभिषेक की सामग्री लाए और कहे मैं आपका अभिषेक करूंगा, यदि राजा दशरथ हमारे विरुद्ध खड़ा होंगे तो मैं आपको जान से मारता हूं, आपको मैं वन में नहीं देना चाहता, आप राजा हैं अयोध्या के, मैं राज दिलाऊंगा, और भरत भी आएंगे तो वो भी सर्वभूमि में सोएंगे। और बिल्कुल लाल आंखें करके कह रहे थे, कौन है जो आपको वन में भेज सकता है, ये आपका है। लेकिन भरण कहते हैं कि भैया कुछ भी हो, जब पिता जी ने मेरी माँ को कह दिया था कि मैं तुमको दुख दूंगा, और उस वर के अनुसार से मांगा, उसने तो कोई अन्याय नहीं किया है, ये तो उन्होंने कहा था ना कि मैं दूंगा। लक्ष्मण जी स्वीकार करते हैं, हाँ ये उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा था उसके अनुसार इसने मांगा हमको 14 वर्ष का वनवास अपने लड़के भरत को राज्य, तो इसमें न माँ गलती है न पिताजी। लक्ष्मण जी कहते हैं फिर भी पिताजी ने आपको कहा नहीं वन में जाने, इसलिए नहीं जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि पिताजी भले नहीं कहे, लेकिन धर्म क्या है, जब जवान निकल गई, जब वचन मुख से निकल गया तो इसका पालन करना चाहिए। मेरे पिताजी अपने धर्म का पालन करने में समर्थ नहीं होते, तो मैं यदि युग पुत्र हूं तो अपने पिता के धर्म का पालन करके मैं दिखाऊंगा। लक्ष्मण मैं भी अड़चन पर करूं, मैं भी कहने लगूं कि मैं बल में नहीं दूंगा, तब पिता धर्म की रक्षा कैसे, इसलिए किसी भी हालत में अपने पिता की धर्म की रक्षा करूंगा और मैं बल में आऊंगा। लक्ष्मण जी को समझाते हैं, कहते हैं इसी के लिए पिता पुत्र उत्पन्न करता है, हमारे पुत्रों में से कोई भी तो किसी दिन गया यात्रा करेगा और बलिदान करेगा, पिता के लिए कोई मुक्त नहीं सकता। भगवान श्री राम से बोल रहे हैं, तो जो भी लक्ष्मण जी के सामने बुरा आ जाती थी कि बड़े भाई हैं अब हम क्या करें, वन गमन का कष्ट उन्होंने आंखों से देख लिए, और इस विरह में जो भगवान रोए तो लक्ष्मण जी का हृदय बहुत व्यथित हुआ, तो उनके मन में अभिलाषा हो रही थी कि अब अगले बार अगर अवतार लेना होगा तो मैं इनका बड़ा भाई बन कर शयन करूंगा, मन सेवा करूंगा, मतलब स्व अपने मन से कर पाना, ये लालसा थी। और इसीलिए श्री बलराम जी अग्रज, नहीं तो वो तो कृष्ण से हमेशा इंफेरियर है, इंफेरियर नहीं कह सकते, अप्राकृत में ये सब शब्द नहीं चुका है, लेकिन कनिष्ठ, हाँ कनिष्ठ कहेंगे हम लोग संस्कृत में, परंतु ज्येष्ठ में हूं, ज्येष्ठ बने अपनी इच्छा के अनुसार कृष्ण को सुखी करने के लिए, कृष्ण की रक्षा के लिए, कृष्ण की नाम। तो अपने अग्रज वृक्षों के मनोभाव को भगवान श्री कृष्ण व्यक्त कर रहे हैं, इस प्रकार भगवान बोल रहे, श्री भगवान वाच अहो यमी देव वराण रचितम पारं भुजन्ते सुमना फलाहनम नमन्तु पादाय स्खाभिरात्मनस तमोपहते तर्जन्म जत्कृतम। भगवान संबोधित करते हैं, हे देववर, हे समस्त देवताओं के परम पूज्य, हे स्वामी, आप देखिए इन वृक्षों पर। भगवान श्री कृष्ण के लिए वृक्ष प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन अपने भावों को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। वे ये कह रहे हैं कि हे देववर, हे देवताओं के पूज्य, ये वृक्ष आपके चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण के कहने का आशय है कि मैं समझ रहा हूं कि तुम मुझे प्रणाम कर रहे हो, मैं तुम्हारे प्रणाम का अनुमोदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस तरह से कहते हैं, हे देववर, श्री बलराम आद्य हैं, इसलिए देववर अथवा देवानाम वरणीय, देवताओं के द्वारा वरणीय, इष्ट देव के रूप में भजनीय श्री बलराम है, इसलिए इनको देववर कहते हैं। ये वृक्ष है, अपनी शिखाओं पर, अपने सिरों पर फल और फूल लेकर आपको अर्पण कर रहे हैं, कृपया इनको ग्रहण कीजिए। देखिए देखिए, आपको भेंट दे रहे हैं। शिखा का अर्थ है सिर। जैसे कोई व्यक्ति, किसी पूज्य व्यक्ति या अपने प्रिय के पास जाता है, अपने सिर पर कोई भेंट की सामग्री लेकर गया, तो वैसे ये सुन फलाहणम, सुमन और फल लेकर आपको अर्पित कर रहे हैं। सुमन अर्थ सुंदर मन भी हुआ, इनका सुंदर हृदय है, इसलिए इससे अर्थ हुआ। और ये पुष्प और फल शिखा भी अपने सिरों को लेकर के अपनी शाखाओं से उतार आया, निकट ला करके दे रहे, उपकर थे निकट, आदाया मान लाकर निकट ला के आपको दे रहे हैं। वृक्षों पर चढ़ना ही पड़ेगा आपको। मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कितने वृक्ष प्रेमी हैं, हम वृक्षों पर चढ़ना ही पड़ेगा, ये हमारे हाथों के पास सिर झुका दिए है, इनका फल मैं लूंगा। देखिए, आपको प्रणाम कहे, आपको भेंट दे रहे हैं, आप इधर कृपा कीजिए। इस सुख के लिए इन्होंने वृक्ष का जन्म स्वीकार किया है, उस सेवा को स्वीकार कीजिए। प्रजन्म जत कृत, वृक्ष इसीलिए बने हैं, आप जब वृंदावन में आएंगे, घूमेंगे, विहार करेंगे, तो आपको ये फल अर्पित करेंगे, फूल अर्पित करेंगे। कितने वृंदावन के वृक्षों का भाग्य साक्षात अर्पित कर रहे हैं, तो हम लोग तो पता नहीं कई दिन का बासी फल खत्तर के कृष्ण बलराम को देखे हैं, कुछ पता नहीं आता है। और वो कच्चा सच्चा तोड़ कर लाते हैं, दुकान धीरे धीरे पकता है, उसमें कोई स्वाद नहीं। लेकिन ये वृक्ष साक्षात डायरेक्ट भगवान कृष्ण को दे रहे, सुमना फला रहा हूं, सिर पर ले करके और आपके चरण कमलें प्रणाम कर रहे हैं। कथम भूत चरण कमलम अमरार्चितम, जिन चरण कमलों की पूजा बड़े बड़े देवता ब्रह्मा शिवादि देवता करते हैं, आपके ऐसे सुदुर्लभ चरण कमलों में प्रणाम कर रहे हैं, आप इन पर कृपा कीजिए। पहले ही वर्णन आया कि भगवान मुद्राते हुए सब कर रहे हैं, विश्व तो इनको प्रणाम कर रहे हैं मुख्य रूप से, लेकिन अपने स्वाद को भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी पर ढाल करके कह रहे हैं, इनको हंसी आ रही है। ये देखिए, आप प्रणाम कर रहे हैं, आप फल अर्पित कर रहे हैं, आपको फूल अर्पित कर रहे हैं, इसी के लिए वृक्ष जन्म स्वीकार किया है, इस सेवा के लिए, तो इनकी सेवा भावना को ता कीजिए। और किस लिए पढ़ रहा है आपको, तमोपहत्यय, इनके मन में दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए भी आपसे ये निवेदन कर रहे हैं। वृक्षों को क्या दुख है, वृंदावन के वृक्षों को कोई दुख नहीं है, लेकिन भक्ति के कारण एक दुख का उदय होता है, वो भी भक्ति है। जैसे राधा रानी कहते हैं कि सखी, मैं परम नारी हूं, कितनी की सेवा नहीं कर पा रही, लेकिन हरदनी शक्ति है, सेवा के अलावा और कुछ कर ही नहीं सकती, कृष्ण को सुख दें उनका काम है, लेकिन फिर भी वे सोच रहते हैं कि मैं कृष्ण को कुछ भी सुख नहीं दी, तो यह प्रेम का ऐसी भावना होती है। वृंदावन के वृक्षों में एक भावना होती है, जैसे गौए सखा पक्षी हरे घूम घूम करके कृष्ण की सेवा करते हैं, जहां कृष्ण जाते हैं वहां चले जाते हैं, हाय हाय हम तरह से सब नहीं जा सकते, उनको उनके मन में दुख होता है। श्री कृष्ण के वृक्ष की छाया में जब आते हैं नीचे शीतल छाया में, तो वृक्ष छन्न हो जाते हैं उनको छाया दे करके। लेकिन जब ही कृष्ण छाया से दुख में निकलते हैं तो वृक्ष रोने लगते हैं कि भाई अगर मुझे भी पलने की शक्ति होती तो हम कृष्ण के साथ चलकर हमेशा छाया करते हुए रहते, हमें छाया करते हुए चलते। वृक्षों को एक दुख, तो मानो वे भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हमको भी जंगम बना दीजिए। यद्यपि वे भी नित्य चलने वाले हैं लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए वृक्ष धर्म स्वीकार किए, पर वृक्ष धर्म स्वीकार करने पर भी उनके मन में एक दुख है। हम कृष्ण के साथ चलकर सदा उनको सीता न दे सकते, सदा उनको फल अर्पित नहीं कर सकते। अगर फल अर्पण करने की शक्ति होती, वृंदावन के वृक्ष चल कर अर्पण करने की शक्ति होती, तो श्री कृष्ण जब लौटते गोष्ठी में तो ये चले जाते वहीं घर में ताजा ताजा फल उनको देते या फूल श्रृंगार करने के लिए देते। लेकिन भीतर एक व्यवस्था है कि जब श्री कृष्ण आएंगे इनके पास तभी ये बेचारे दे सकते हैं, कृष्ण के पास जा नहीं दे सकते हैं। तो हे देव श्रेष्ठ, ये आपके चरण में प्रणाम करके ये भीख मांग रहे हैं कि इनको भी आप जंगम चर बना दीजिए, यहां आप जाए वहां आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार भगवान कृष्ण एक प्रकार से आशीर्वाद दे, मैं तुम्हारी सेवा को समझ रहा हूं और तुम्हें यह अवसर मिलेगा कि मैं जहां जाऊंगा तुम जा सकोगे, लेकिन अब स्वरूप को बदल रखे। एक ही जीव कभी वृक्ष हो जाता है, घास हो जाता है, गाय हो जाता है और पक्षी हो जाता है, अप्राकृत जगत में जीव का स्वरूप है, जो चाहे स्वरूप बनाकर कृष्ण की सेवा कर सकता है। अगर कृष्ण को बैठने की इच्छा होती है तो तुरंत वो घास बन जाता है, हम तो कृष्ण आराम करें। कृष्ण को झूला झूलने की इच्छा हो तो वृक्ष बन, लेकिन फिर भी एक सेवा करने पर लालसा हो कि हाय हाय मैं ये दूसरी सेवा नहीं कर सकता हूँ, दूसरा सुख नहीं दे सकता हूँ। जो परुण में जत कृतम तमो भक्ते, ऐसे तो कृष्ण की सेवा करने के लिए वृक्ष का जन्म स्वीकार किए लेकिन फिर भी एक दुख रह गया इनके मन में, तो उस दुख के नाश के लिए हे देव श्रेष्ठ आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, कृपया इनको आशीर्वाद दीजिए कि आप जहां जहां जाए वहां वहां आपकी सेवा कर सके। इस प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों को वृक्षों को आश्वासन दे रहे हैं इनडायरेक्ट भाषा में कि तुम्हारा दुख दूर है, तुम सब जगह मेरी सेवा कर पाओगे। यहां भगवत लीला के साथ साथ भक्तों को एक प्रेरणा मिलती है कि अपने पास जो कुछ भी है भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करना चाहिए, वो सब कुछ जान कितना प्रेम कर रहा है, क्या दे रहा है, उनको सब कुछ पता है। कभी कभी क्या भगवान हमारी भक्ति को हमारे दान को जानते हैं, क्या वे उसकी कभी प्रशंसा स्वीकार करेंगे। तो यहाँ भगवान अपने आचरण से बता रहे हैं जब वे वृक्षों के भेंट को स्वीकार कर रहे हैं तो हमारी भावना को हमारी भेंट को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे। लेकिन अपने पास जो कुछ भी है वो कृष्ण को अर्पण करना सीखना चाहिए। तो वृंदावन के वृक्ष फल और फूल अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद श्री कृष्ण पूरे एक श्लोक में भावरों का वर्णन करते हैं। एते लिनस्तवज सोखिल लोक तीर्थम गायन्ते आदि पुरुषानुपदम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़ बने पिन जहा तन घात्म दैवं। सब जगह भगवान अमी एते इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अंगुली से दिखा रहे हैं। श्रीमद अंगुल्य दर्शयति, श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि अपने श्रीमद सुंदर अंगुली से भगवान दिखा दिखा कर कह रहे हैं, फूलों पर लताओं पर या वृक्षों पर भावरे मंडरा रहे हैं और श्रीकृष्ण की वनमाला पर भी, तो इनको दिखाकर भगवान श्रीकृष्ण बलराम जी से कहते हैं एते अलिना, हे देव हे आदि पुरुष देखिए ये भावरे मतलब निकट है, ये भावरे आपके यश को गा रहे हैं, आपके यश को गा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए, आपके यश को गा रहे हैं मतलब भगवान अनुमोदन कर रहे हैं कि ये भावरे मेरे यश को गा रहे हैं, कृष्ण कथा गा रहे हैं। वृंदावन के भावरे साधारण भावरे नहीं, कथम भूतम जसह, कैसा जस गा रहे हैं, अखिल लोक तीर्थम, जो आपका यश मतलब मेरा यश समस्त जीवों के समस्त पाप राशि को धो देता है, ऐसे जस को गा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मनुष्य के जीवन में सबसे सुकृत सबसे महान कार्य है वास्तव में कृष्ण के जस को गाना, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। भगवान श्री कृष्ण के गान से बढ़ करके और कोई साधन नहीं, ये सब जगह भागवत में कहा गया है। श्रवण और कीर्तन, गान गान गान, इसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। अखिल लोक तीर्थम, तीर्थ का अर्थ होता है जो तार देता है, पाप ताप को धो करके शुद्ध कर देता है, उसको तीर्थ कहते हैं। अखिल लोक तीर्थम, अखिल लोक कहते हैं अखिल लोग, चाहे कोई भी हो, किसी भी जोनी में हो, कहीं भी यदि भगवान का यश सुनने को मिलता है या गाने को मिलता है तो उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, इसको अखिल लोक तीर्थ कहते हैं। तो ऐसे यश को ये भौरे गा रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए क्या गा रहे हैं, ये निश्चित ही आपका नाम गा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भौरों की गुनगुनाहट निश्चित ही वैसी है जैसे इस कान में मंगला आरती के बाद भक्तों के जप के द्वारा होती है, जप करते हैं, भन 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 भन, जो जहां है वहां जप कर रहे हैं। भौरों में एक विशेषता भगवान ने बनाई है, भौरों के मुख में सुरीला स्वर होता है और वे जब उड़ते हैं तो उसके अनुसार उनके पंख भी बजते हैं, उनको अलग से हारमोनियम लेकर चलने की जरूरत नहीं, भगवान ने उनको ऐसी सुविधा दी है, उनके स्वर के साथ उनके पंख भी हारमोनियम की पत्ती की तरह बजते रहते हैं, तो इस तरह गाते रहते हैं पूर्ण साजबाज के साथ गाते हैं। गायंत आदि पुरुषानुपदम भजन्ते, इसमें आदि पुरुष संबोधन कर रहे हैं श्री बलराम जी को कि हे आदि पुरुष, और यहीं से प्रकट हो जाता है कि श्री कृष्ण अपने लिए कह रहे हैं, वे अपने लिए कह रहे हैं कि ये भाव है मेरे यश का गान कर रहे हैं। और अनुपदम भजन्ते, ठीक वृक्षों से विपरीत, बेचारे वृक्ष एक जगह खड़े रहते हैं दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, वो एक देशीय सेवा करते हैं, लेकिन ये भौर है ये तो अनुपदम भजन्ते, अनुपदम मतलब प्रत्येक स्थान पर आप जहां जाते हैं वहां ये जाते हैं, ये तो संग छोड़ते ही नहीं है। ये भौरे कितने भाग्यशाली हैं कि प्रत्येक स्थान पर आपके साथ रहते हैं, तो आप किसी गूढ़ निकुंज में भी जब चले जाते हैं और निकुंज लीला करते हैं वहां भी आपका साथ नहीं छोड़ते, जहां सखा भी नहीं जा सकते हैं, जहां और कोई नहीं जा सकता। इनके कहने का मतलब है कि मैं जब श्री राधा जी के साथ रहता हूं वहां भी ये मेरे वनमाला पर पहुंच जाते हैं, ये कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं। तो अनुपदम भजन्ते और गूढ़म बने पिन जहत अनघात्म दैवम, हे अनघ, हे भक्तों का अपराध चित्त में कभी नहीं लेने वाले, मतलब भक्तों के द्वारा यदि कोई भूल चूक हो जाती है तो प्रभु कभी भी उसको मन में नहीं लेते हैं, उनको अनघ पद और मैंने अपराध। श्री बलराम जी या भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं कि किसी प्रेमी से भक्त से कोई अपराध हो जाए कभी कभी वे उसको अपने मन में नहीं लेते हैं, कभी नहीं ले सकते, ये उनका स्वभाव है। कभी अपराध इस प्राकृत जगत में भी भक्तों के अपराध को वे लेते ही नहीं, अपराध जगत में तो कोई अपराध ही नहीं होता है, मन में लेने का तो कोई प्रश्न ही नहीं, इसलिए उनको अनघ कहा जाता है, भक्तों के अघ को अपराध को कभी भी वे नहीं लेते। एक प्रश्न हो सकता है कि जब भावरे कभी नहीं साथ छोड़ते हैं तो ये तो गलती करते हैं, कभी कभी उनको कृष्ण का संग छोड़ना चाहिए, लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं, अपराध है ही नहीं, हमारे साथ हमारा जस गाना या अपराध नहीं है, और कदाचित अपराध भी हो कभी तो उसे मैं अपने चित्त में नहीं। तो आप वन में छिपे हुए हैं, गोप भेष में हैं, या किसी निकुंज में भी जब आप छिपते हैं वहां भी न जहती, ये आपका संग नहीं छोड़ते, क्योंकि अपने परम प्रियतम को, इष्ट को ये पहचान चुके हैं, आपको पहचान चुके हैं, तो इसलिए निश्चित ही है देव ये आपके सेवकों में मुख्य सेवक है, भवदीय मुख्य आपके जो पार्षद हैं नारद आदि, या इस ब्रज में भी जो आपके सेवक हैं मुख्य, उनमें से ये श्रेष्ठ है, भवदीय मुख्य। भवदीय माने आपके, आपके जितने जन हैं उनमें से ये श्रेष्ठ हैं। और हम तो ऐसा समझते हैं कि ये मुनिगण हैं, ये भावरे भावरे नहीं है, ये मुनि है, ये नारद आदि मुनि हैं। लेकिन उन्होंने एक ट्रिक किया है कि बिना भावरा बने इनके साथ 24 घंटा रहने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए भावरा बने। इनकी देखिए चतुराई, ये मुनिगण है, अथवा भवदीय मुख्य मुनिगणा का ये अर्थ है, गण का अर्थ होता है सेवक, समुदाय, ऐसा कहा जाता है वो अपने गण लेकर के चल रहा है। तो मुनिगण का अर्थ है कि मुनि जन जिनके गण है, सेवक है, ऐसे आपके पार्षद आप ये हैं, मुनि जन जिनके गण हैं, सेवक हैं, ऐसे आपके भवदीय मुखिया, आपके श्रेष्ठ पार्षद ही भावरे के रूप में चल रहे हैं आपका जस गाते हुए। तो ये सब मुनि है, ये भगवान बोल रहे हैं, किसी तुच्छ जीव को कह देना ये मुनि है ये साधारण बात नहीं है। मुनि किसको कहते हैं? मुनि कहते हैं जो भगवान के यश को हमेशा गाते हैं और दूसरी बात नहीं बोलते हैं, उनको मुनि कहा गया। भागवत में श्रीधर स्वामी ने टीका दिया सो मुनि कहते हैं। अरे भरतश्री जी टीकाकार है भागवत के, वो कहते हैं कि नामना मुनिर नहीं मुनिर, मुनिराज सैव जस तत्च्युताच्युत जसश्चान चित्त श्रीमद पदाम्बुज रति सहकी दृशोपि एतत् स्फुटम् मुनि पद व्यपदेश तोलम। नाम केवल मुनि हो जाए तो वो मुनि नहीं होता है, नामना मुनि नहीं मुनि, केवल किसी का नाम रख दीजिए मुनि है, लेकिन नाम रखने से कोई मुनि नहीं होता है। मुनि ही नहीं बल्कि मुनिराज वह है जो श्री कृष्ण के अखंड यश को गाता रहता है, यही मुनि का धर्म। अच्युत अच्युत जसस चरगान चित्त, जिसका चित्त अच्युत के अच्युत गान में लगा हुआ है। अच्युत का अर्थ है कभी खंडित नहीं, समाप्त नहीं, जो हमेशा कृष्ण के विषय में बोलता रहे, जप करता रहे, गाता रहे, वही है मुनि। और इसी के कारण भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं भावों को कि हे देव, यही वास्तविक मुनि है। एक तो आपका संग कभी नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरे आपका गान कभी नहीं बंद कर रहे हैं, आप भावों को जहां भी देखेंगे हमेशा बोलते रहते, हमेशा बोलते रहते। एक भक्त ने टीका में कहा है कि पता नहीं भावरे भगवान का जस गा रहे थे या नहीं गा रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इस तरह से उनका अनुमोदन कर रहे हैं तो शिक्षा दे रहा है कि मुनि वही है जो मेरा जस गाता है इस प्रकार से। लेकिन तत्वतः अप्राकृत धरातल पर विचार किया जाए तो निश्चित ही भावरे भगवान के पार्षद, और भावरा बन करके मुनिजन पार्षद जन भगवान के साथ साथ चलते, तो अपनी अंगुली से भगवान दिखा रहे हैं भावरों को, और भावरों के साथ श्री कृष्ण कई घंटों तक रोज गाते थे। भागवत में लिखा गया है कभी भगवान कृष्ण भावरों के स्वर में स्वर मिलाकर गाया करते थे, किसी लता के पास कुंज के जाकर जहां भावरे गाते हैं वहां वो भी गा लेते हैं। और ये बलराम जी को कहते हैं आप भी आलापिए, सब लोग देखो कितना अच्छे गा रहे हैं, उनसे ज्यादा स्वर नहीं कम स्वर नहीं, और आंखें बंद करके आलाप लेते हैं, स्वयं अपना नाम गाते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। अमी कीर्ति को भावों के साथ भगवान गा करते हैं वृंदावन, इतने सौभाग्यशाली जीव हैं जिनको अंगुली संकेत करके भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये निश्चित ही आगे पार श्रेष्ठ है, आपके जन्म में श्रेष्ठ है, और मुनि आपका संग नहीं छोड़ा, आत्मदेव अपने इष्ट देव को अपने प्रिय को पहचान लिए, क्यों उन्होंने इतना नहीं समझ सके, ये संत लीला में भी चले जाते। सखाओं के लिए या श्री बलराम के लिए भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं में देश वर्जित है, वह नहीं जाते, श्री कृष्ण गोचारण करते 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 कभी सखाओं से अलक्षित हो जाते, अथवा एक वहां वैसे ही वक्र दूसरे रूप से
भौरों का गुणगान कर रहे हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब विभिन्न प्रकार के पक्षी कोयल चाता पीहा चकोर ये सब बोलना चालू करते हैं। सभी कृष्ण का कोई न कोई नाम बोल रहे हैं, कोई संबोधन कर रहे हैं, परम आनंद में परम सुख में जहां कृष्ण जाते वहां वे उड़ उड़ करके विविध वृक्षों पर जाते हैं, कृष्ण देखते हैं कू कुधवा करते हैं, अपनी अपनी बोली में बोलने लगते हैं। तो श्री कृष्ण दिखा रहे हैं मयूर को जो कृष्ण बलराम को घेर करके नाच रहे हैं, कई मयूर मिल करके नाचना चालू करते हैं और श्री कृष्ण बलराम वहां से जाते हुए बीच में उनके साथ नाचते हैं। तो श्री कृष्ण दिखा रहे हैं नृत्यं तमीशिनी मुदारिण्य कुर्वन्ति गोपैव ते प्रियमीक्षणेन सुक्तैश्च कोकिल गणा गृहमागताय धन्ना वनौ कशय्या निशता निषदः। हे विद्य, तब श्री बलराम जी को भगवान ने आदि पुरुष कहा तो श्री बलराम जी कुछ लज्जित से हो गए, क्या हो गया है आज अपना नाम मुझे दे रहे हैं, तो मैं आदि पुरुष श्री कृष्ण है, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो बलराम जी का चेहरा थोड़ा झोंका, वो थोड़ा हिचकिचाए कि हमें क्यों आदि पुरुष आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनको शासन देने के लिए ईद शब्द कह रहे हैं, ईद का अर्थ है प्रशंसनीय, आप निश्चित स्तुति के योग्य हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं, आप वृंदावन के ईश्वर हैं, आप इन सब के स्वामी हैं, आप क्या संकोच करते हैं। देखिए अमी सिखिना नृत्यंती मुदा, देखिए ये मयूर मयूरगण नाच रहे हैं, इनका नाच देखिए आप। भगवान श्री कृष्ण के कहने का आशय है कि मैं देख रहा हूं अपने भक्त मयूरों का नृत्य देख रहा, किस तरह वे ये कहें कि ये मेरा स्वागत कर रहे हैं, ऐसा भगवान नहीं कहेंगे। कोई महान व्यक्ति इस तरह अपने अपनी सलाह नहीं कर सकता है कि ये मेरा स्वागत कह मुझे अर्थ कर रहे हैं। भगवान श्रीकृष्ण सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए उनके प्रेम को प्रकट कर कहने के लिए कहा हे देव देखिए मयूर नृत्य कर रहे हैं। अमी सिखिना नृत्यंती भावरों के लिए कहे एते अनिला ए भावरे, हमेशा अंगुली से दिखा रहे हैं और कभी हाथ से दिखा रहे हैं, ये मयूर नाच कर रहे हैं, देखिए तिरक तिरक कर नाच रहे हैं और कितना आनंद में नाच रहे हैं। आप जब इनके घर में आए हैं वृंदावन में आए हैं तो नाच द्वारा आपका स्वागत कर रहे हैं, नाच नाच करके आपका स्वागत कर रहे हैं। और हरिणिया देखिए ये हरिणिया कृष्णसार मृग की पत्नियां प्रिय अपनी दृष्टि द्वारा अपने सुंदर सुंदर आंखों से निरीक्षण द्वारा आपका प्रिय कर रहे हैं। हरिणिया और बोल नहीं सकती, भगवान ने उनको गाने की और नाचने की कला नहीं दिया है, लेकिन नेत्र ऐसा सुंदर दिया है, उन नेत्रों से कृष्ण की ओर देखना एक बहुत बड़ा स्वागत। कोई किसी के घर पर जाता है तो अतिथि के स्वागत के लिए अनेक सामग्रियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है अनुकूल भाव से देखना, पहला स्वागत। आप अपने सौभाग्य माने कि हमारे घर में आप आ गए, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, और आंखों में आंसू आ जाए पुलक आ जाए और इस दृष्टि से आदमी देखे और उसके घर में यदि कुछ भी ना हो फिर भी स्वागत पूर्ण हो जाता है। से घर में मान लीजिए भोजन नहीं है, आसन नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके मन में केवल प्रेम से देखना आ जाए, देह में सौभाग्य माने कि आपका दर्शन हुआ, मेरा अहो भाग्य है आपको देख करके, तो यह दृष्टि का इस तरह से देखना एक बहुत बड़ा आगत माना गया। तो हरिणिया इस तरह स्वागत कर रही और सुक्त इस चकोकिल गणा है, और कोई कैसे कृष्ण का प्रिय कर रहे हैं सुक्त सुंदर भी द्वारा, भगवान ने कोयल रूप अच्छा नहीं दिया है, काला दिया है और स्वभाव बहुत बुरा है। कोयल है अपने बच्चे का पालन ही नहीं करते हैं, उनमें स्नेह ही होता है, वो कौवा से अपने बच्चे का पालन कराते हैं, इसलिए उनका स्वभाव अच्छा नहीं आ जाता, और रूद तो कोयल कोयला ही होता है, वो काला होता है, लिरकुट बहुत सुंदर भगवान ने दिया है। तेरे बसंत ऋतु जब भी वो बोलते हैं तो किसका मन प्रसन्न नहीं होता, तो सुक्त कोकिल गड़ा मुदा तेरी कुर्बंती, ये ते प्रियम कुंती तीनों में लगेगा सब जगह, सिखिना नृत्यंती ये मयूर नाच द्वारा ते प्रिय कुर्वन्ति और हरिण्य इच्छणे न प्रिय कुर्वन्ति और कोकिल गणा सुक्त ते प्रिय कुर्वन्ति। कथम भूतम ते गृहमाता, क्योंकि आपके घर में आए। आप ये ऐसा सोते हैं, मयूर ये हरिणिया कोयल आदि चरण और भी पक्षी पशु ये सब ऐसा सोच रहे हैं कि आप ये घर में अतिथि आए हैं, इसलिए इनके पास दुहि विधाता ने गुण दिया है तो उसके द्वारा आप स्वागत कर रहे हैं, मैं स्वागत कर रहे हैं। भगवान का कहना सही है, धन्य बनौ कसिया निशतमिरक निसर्ग। भगवान श्री के मुख से निकल रहा है धन्य है ये वनवासी, वन में रहने वाले ये जीव धन्य। धन्य अर्थ होता है जिनके पास सबसे बड़ा धन है, धन है कृष्ण प्रेम, यह धन जिसके पास कृष्ण प्रेम धन है वह धन्य। धन से धन्य शब्द मतलब सुखी है, वास्तव में ये कृतार्थ है। अपने जीवन में जो करने लगा काम है वे कर चुके हैं, इसको कृतार्थ कहते हैं, कृत कृत्य कहते हैं, जो कृत्य को कर चुके धन्य। ऐसा भगवान का वाक्य प्रथम बार निकला है पूरे कृष्ण लीला ब्रज में, अभी किसी भी व्यक्ति को उन्होंने नहीं कहा था कि ये धन्य, लेकिन वनवासी जी को भगवान कह रहा है ये धन्य धन्य बनाऊ। न उनका कोई फ्लैट है, न उनका कोई बैंक है, न फोन है, कुछ नहीं, वनवासी जीव है। किसी को भगवान ने कंठ भर दिया, किसी को फल फूल दिया, चल नहीं सके, भोजन है वृक्ष पास लेकिन बेचारे चल नहीं सके। उनको वृक्षों को शामिल करके, वृक्षों से लेकर कोकिल तक समस्त पक्षियों को भगवान कहते धन्य बनाऊ कसर। उनका अपना कोई घर नहीं है, वन ही घर, वन में रहते हैं, वृक्ष कहते हैं, भगवान ने जो कुछ भी दिया वो खा लेते हैं, संतोष से रहते हैं, कृष्ण का कीर्तन करते हैं, कृष्ण का स्वागत कर रहे हैं, नाच करके गा करके स्नेह भरी दृष्टि देख करके। अब क्या बाकी, किसी के घर में कोई भी अतिथि जाए तो स्वागत वास्तव में भूमि जल और आसन ये तो सामान्य है। श्रीपद वल्लभाचार्य जी श्लोक टीका कहते हैं कि कोई यहां पर आसन दे और बल दे तो ये सब सामान्य स्वागत है, असली स्वागत है गाना नाचना और प्रेम से देखना, ये असली स्वागत होता है। पता चलता है कि वास्तव में स्वागत हो रहा है, नहीं तो खाने को तो बिना के भी आदमी दे देगा, भार मान करके किसी को खिला देगा, आ गया है तो इसको खिला, या बचने के लिए भ्यास दे देगा भाई जी। लेकिन उस बोली उसकी आंख के चितवा और उसकी काल हाव भाव से पता चल जाता है तो वास्तव में प्रेम कर। तो भगवान कह रहे हैं ये मुदा ये आनंद में नच रहे हैं, आनंद से आपकी ओर देख रहे हैं, धन्य है ये। इन हरिणियों की बात पर भगवान को एक और स्मरण आ गया। श्री बलराम सिंह कहते हैं कि हे देव, हे स्त्री के योग्य, ये हरिणियां आपको सिंह से वैसी ही देख रही हैं जैसे गोपियां आपको देखती हैं। ये अपने ही कह रहे हैं, इसलिए ये मुख से बात कर रहे हैं। और एक बार नहीं, आगे श्लोक में भगवान कहते हैं कि धन्य जैसे गोपियां धन्य है आपको स्थल का स्पर्श करके। इस तरह से भगवान मुख से शब्द निकल रहा है अपने बड़े भाई के साथ, आश्चर्य की बात। जबकि कोई प्रसन्न नहीं है, वनवासियों का वर्णन कर रहे हैं तो वहां पर गोपियों के वर्णन की कोई जरूरत नहीं थी, और वो भी बड़े भाई साथ। इस पर सूर्य जी ने एक बहुत सुंदर भाव व्यक्त किया है, लिखते हैं कि अद्दासो जस जस मनसी दृढ़ो वर्तते वस्तु जाते तब वक्त्रा तद विनिर्जात अवश्य समय भूरी संस्कार योग है एवं गोपी गतात्मा सही विभुदत गोपिका दी नोचेत उदिशाम दीपी निगमतर तादृग उपशक्ति। किसी वस्तु में जब किसी व्यक्ति का दृढ़ अभ्यास होता है, आसक्ति होती है, दृढ़तर आसक्ति होती है, तो अवश्य समय में उसके मुख से वो बात निकल जाती है, कभी कभी निकल जाती है उसके मुख से बात। क्यों? भूरी संस्कार योग है, अतिशय संस्कार योग के कारण। जब एक विशेष प्रकार विचार का संस्कार हृदय पर पड़ा है तो अस अवस्था में, जैसे स्वप्न में या होने पर या अवस अवस्था में मुख से बात निकलती है। तो भगवान श्रीकृष्ण तो है वास्तव में गोपी गतात्मा, गोपी इनका चित्त लगा हुआ रहता है हमेशा। जैसे गोपी जन रात श्रीकृष्ण के विषय सोचती रहती है, वैसे श्रीकृष्ण भी रात दिन गोपी जनों का चिंतन करते हैं। क्योंकि परम प्रेमी है भगवान। अगर गोपियां भगवान के चरण कमल चिंतन करके रोती हैं अपने घर में, वे वन में घूम रहे हैं, कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर लग रहा है, इतना प्रेम गोपीजनों को है, वे कृष्ण के लिए विकल है, तो कृष्ण भी वन में गौए चराते हुए उनके चिंतन में विभोर है। इसलिए बड़े भाई के पास भी उनके मुख से निकल गया, गोपियां आपको वैसे देख रही हैं जैसे, नहीं, हरिणियां आपको वैसे देख रही हैं जैसे गोपियां आपको देखती हैं, और गोपियां धन्य। आगे कहे इसको भूरी संस्कार जो कहते हैं, भगवान का भी अपना कुछ संस्कार है, जिसमें उनका चित लगा हुआ है तो बात आ ही जाएगी मुख से। तो अपना वर्णन कर रहे हैं, इस श्री बलराम जी की तरफ तो गोपियां इस तरह देखती नहीं है जैसे हरिणियां देखती हैं कृष्ण की तरफ। तो अवस अवस्था में भगवान कृष्ण के मुख से वो बात निकल गई। ये अवस अवस्था आनंदातिरेक से, और वो बोल भी दिए, केवल स्मरण भी नहीं आया, वो बोल भी दिए। यही है भगवान का प्रेम गोपीजनों के साथ। ऐसा नहीं है कि केवल गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं। जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, जो जैसे कृष्ण से प्रेम करता है वैसे ये भी प्रेम करते हैं। तो कहां नहीं कृष्ण चर्चा कर सकते हैं, जब अपने आर्य के पास, बड़े भाई के सामने जब गोपियों की बात उनके मन से निकल सकती है, तो कहां ऐसा स्थान है जहां कृष्ण के चित्त में गोपियां नहीं। श्रीमद् भागवत में जगह जगह गोपियों के प्रेम की चर्चा इस तरह से है, और निश्चित ही भक्तों को इस रस के लिए लुब्ध होना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु इसको बताओ, तो हरिश्री जी के हम लोग ऋणी हैं जिन्होंने यह भाव खोज करके बता दिया है। वास्तव तो अनेक आचार्यों ने टीकाएं की हैं इस पर। अब भगवान धन्य धन्य कर रहे, धन्य बनौकस यानी सतम निसर्ग। वास्तव में हे देव, हे हमारे अग्रज, यही है सज्जनों का स्वभाव। याम सतम निसर्ग, यही है साधु का स्वभाव कि अपने घर में आए हुए अतिथियों को इस तरह भोजन दिया जाए, नाच किया जाए, गाया जाए, और उन पर प्रेम से देखा जाए। वृक्ष भोजन दे रहे हैं, भौरे और कोयल गा रहे हैं, मयूर नाच रहे हैं, और हरिणियां प्रेम से देख रहे हैं। यान ही सताम निसर्ग, यही है आपके भक्तों का स्वभाव, मतलब मेरे भक्तों का यही स्वभाव। यह भगवान के श्रीमुख से निकल रहा है, यान ही, यही है स्वभाव, यही है भक्तों का स्वभाव। यही भक्तों का स्वभाव का मतलब ये हमें अपने लिए लेना है, हमें ही कृष्ण के आगे नाचना है। हम कृष्ण के लिए मुदा आनंद में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और कृष्ण के श्री विग्रह पर देख रहे हैं स्नेह भरी चितवन से, और उनको हम पत्रम पुष्पम अर्पित कर रहे हैं, अपना शरीर तन मन सब कुछ। तो या नहीं सताम निसर्ग, निसर्ग अर्थ होता है स्वभाव, यही है भक्तों का स्वभाव। अब इससे अधिक भगवान क्या कह सकते कि अन्य भक्तों के लिए, सताम के लिए उदाहरण ले रहे हैं वनवासियों का, और वो भी वनवासी मनुष्यों का नहीं, त्रियक जाति का, पशु पक्षियों का उदाहरण ले रहे हैं। सज्जनों को, मेरे भक्तों को इनसे सीखना चाहिए, यही है मेरे भक्तों का स्वभाव। ये बहुत ऊंची बात भगवान कह रहे हैं, बहुत ऊंची बात, कि पशु पक्षियों को एक आदर्श रख रहे हैं कि इनसे सीखना है, यही है स्वभाव मेरे भक्तों का। इस तरह मेरा जस गाना चाहिए, मेरे लिए नाचना चाहिए, मुझ पर देखना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, तो मुझे भेंट देना चाहिए, ये भगवान के कहने का आशय। तो अब जब धन्य बात आने लगी कि कौन धन्य है, धन्य बनौकस नगरौकस न धन्य, ये बम्बई दिल्ली में रहने वाले नगरौकस धन्य नहीं है, बनौकस धन्य, वन में रहने वाले धन्य। ओकस का अर्थ होता है घर। निश्चित ही भगवान को स्मरण आ रहा होगा ये बात कहने में, द्वारका या हस्तिनापुर या बैकुंठपुरी, जहां बहुत ऐश्वर्य है वहां भी भक्त लोग भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन जब भगवान के मुख से धन्य शब्द निकला तो वनवासी जीव के लिए धन्य है वृंदावन के जीव, मनुष्येतर मनुष्यों से भिन्न प्राणियों के लिए धन्य कह रहे हैं। हे देव, ये धन्य है जो आप किस तरह सेवा कर रहे हैं। अब पुनः भगवान धरती की ओर, भूमि की ओर देख कर कहते हैं, धन्य यह है भूमि, धन्य जो मध्य धरणी तृण वीरुधास्त पाद स्पृशो भ्रमलता प्रजा विमृष्टा नद्यो द्रय खग मृग सदयावलोक गोप्योन्तरेण भुजयो रतुज स्पृहाश्री। यम धरणी अद्य धन्य, आज यह पृथ्वी आपके चरण कमलों के स्पर्श से धन्य हो गई। ऐसे भगवान के कहने का आशय यह है कि धन्य तो यह पहले से ही है, श्री वाराह देव के दांतों पर या उनके आलिंगन में आने के बाद यह धरती धन्य हो चुकी थी, और श्री वामन देव ने जब इसको नापा अपने चरणों से उस समय भी धन्य हो गई थी। अनेक बार अनेक अवतारों में आपने इसको सौभाग्य दिया, यह धन्य है, लेकिन वास्तव में पूछा जाए तो आज यह 100% धन्य हो गई आपके चरण कमलों का स्पर्श कर, आज धन्य हुई है। इस प्रकार भगवान पृथ्वी का गुण गा रहे हैं, आज मेरे चरण कमलों का स्पर्श पाकर के धन्य हुई। कृष्ण से संबंधित होने पर ही कोई वस्तु धन्य होती है, कृष्ण से जिसका कोई संबंध नहीं है वास्तव में वह अभागा है। इसलिए यथाशीघ्र कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कई बार धन्य, धन्य या मध्य धरणी, या धरणी धन्य है। धरणी की बात तो दूर है, इस पर उगे हुए इसके पुत्र आदि तृण विरुद्ध, इसके घास तृण लताएं त्वत्पाद स्पृश, जब आप चलते हैं और आपके चरण कमल घास पर पड़ते हैं, लताओं पर पड़ते हैं, तो आपके चरण स्पर्श ये धन्य हो गए। ये धन्य है यह भूमि वृंदावन की, और धन्य है इस वृंदावन में उगे हुए तृण, धन्य है लताएं जिन्हें आपके चरण कमलों का स्पर्श मिल रहा है, और धन्य है वृक्ष, इस वृंदावन के वृक्ष धन्य है, लता धन्य है जिनके फूलों को फलों को आप अपने करकमल से आप नखों से तोड़ते हैं, आपके करज का स्पर्श इनको मिलता है, अभिमृष्ट है। करज नख को कहते हैं, कर से जो उत्पन्न होता है, अंगुलियों को, आपके अंगुलियों के स्पर्श से वृक्ष धन्य हो गए, लताएं धन्य हो गई, आपके चरण कमलों के स्पर्श से वृंदावन की घास और लताएं धन्य हो गई। बिरुद कहते हैं जो जमीन पर रहती है, और लता कहते हैं जो वृक्षों के सहारे ऊपर चढ़ती है। बिरुद भी लता है लेकिन वो जमीन पर फैलती है, तो जो जमीन पर लताएं फैली हुई है उस पर भगवान के पैर पड़ रहे हैं, श्री कृष्ण के पैर पड़ते हैं अपने सखाओं के साथ, श्री बलराम के साथ। तो धन्य है ये जिनको साक्षात आपका चरण कमल मिल रहा है, आपका करज आपकी अंगुलियों का स्पर्श मिल रहा है, और धन्य है गिरिराज, धन्य है यहाँ के पर्वत आदि, बद्री गिरिराज आदि, धन्यो अद्रय इस ब्रजभूमि में रहने वाले पर्वत धन्य है, खग मृगा यहाँ के पक्षी और यहाँ के पशु धन्य है, जिन पर आपकी प्रेम भरी दृष्टि पड़ती है, आप आंखों से जिनको देखते हैं, सदयावलोक अपना समझ करके, अपने धाम का निवासी समझ करके जिन पर आप प्रेम से देखते हैं, तो ये पर्वत और नदियां, श्री जमुना श्री मानस गंगा आदि नदियां और गिरिराज और आदि बद्री आदि ये पर्वत खग मृग ये सभी धन्य हैं जिन पर आपकी दृष्टि पड़ रही है। और गोप्योन्तरेण भुजयो रपिजत स्पृहा श्री, और भुजयो रपिजत स्पृहा, भुजयो अंतरेण आपके दोनों भुजाओं के बीच के स्पर्श से गोपियां धन्य हो गई। ये भगवान के मुख से आ रही है बात, हमेशा गोपियों का स्मरण आ रहा है। जय जथा माम प्रपद्यन्ते तां सथैव भजामि, निश्चित है कि गोपियों के प्रेम की तुलना कहीं नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि जत या श्री ही आपके वक्षस्थल का स्पर्श पाने के लिए लक्ष्मी जी भी तड़पती हैं, तपस्या करती हैं, उसी वक्षस्थल के स्पर्श से गोपियां धन्य। जब धन्य धन्य आने लगा तो भगवान को याद आया कि गोपियां तो सबसे ज्यादा धन्य हैं, तो उस संदर्भ में वे अपने बड़े भाई के पास बोल दिए। आनंद के अतिरेक में उद्रेक में गोप्यो अंतरेण भुजयो, भुजयो अंतरेण, भुजा के बीच से, भुजयो दो वचन में अंतर मन बीच, भुजा के बीच के स्पर्श से गोपियां धन्य होंगी, मतलब वक्ष स्थल से। इसके द्वारा यह निर्विवाद सिद्ध हो गया कि भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन गोपी जनों को प्राय मिलता था, चाहे राधा रानी के साथ गलवाही देने में या प्रेम से मिलते होंगे, कृष्ण के वक्षस्थल का स्पर्श गोपी जनों को मिलता था, जिसकी चर्चा बार बार है। कभी कभी प्रश्न उठता है कि भगवान से कहां मिलन होता था, कहां भेंट होती थी, उसका संकेत जगह जगह सुखदेव गोस्वामी ने दिया। तो यह धरती चरण कमल के स्पर्श से धन्य हुई, और धरती पर आने वाले तीर्ण विरुद्ध चरण कमल के स्पर्श से, और द्रुमलता अंगुलियों के स्पर्श से, नदी पर्वत खग मृग ये स्निग्ध चितवन से दृष्टिपात से धन्य हो गए, और गोपियां धन्य हो गई हैं आपके वक्षस्थल के स्पर्श से। इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, भगवान के मुख से धन्य धन्य निकल रहा है, कितना वे आनंद में है। जितना भगवान कृष्ण सुखी रहते हैं वृंदावन में, उतना कहीं नहीं। जहां के स्थावर जोनी में रहने वाले जीव उनको सुखी कर रहे हैं, तो और क्या कहना। इसे ये नहीं समझना चाहिए कि वृंदावन वासी उनके सखा या मां यशोदा आदि इन वृक्षों से कम सुख दे रहे हैं, वे अपने स्थान पर सबसे बड़े हैं। इस प्रकार अपने धाम, अपने घर में, अपने धाम में भगवान श्री कृष्ण अपने परिकरों से इस तरह प्रेम करते हैं, धन्य है ये जीव, धन्य है। कभी भी इन जीवों के साथ भगवान का वैरस्य नहीं उत्पन्न होता है, कभी वे भगवान की सेवा से उबते नहीं है, ये कभी हो ही नहीं सकता है, ये संभव ही नहीं उस अप्राकृत जगत में, ये कभी संभव नहीं है। भक्तों को कभी मन में नहीं सोचना चाहिए, एक समय ऐसा होता होगा जबकि जीव उबता होगा सेवा से और कृष्ण कहते होंगे तुम बाहर जाओ, ये सब बातें नहीं है। जब शास्त्र को ठीक से पढ़ा जाए तो वे साफ, जैसे सूर्य के प्रकाश में हम सब कुछ देखते हैं, वैसे हम समझ सकते हैं भागवत के दीपक से, भागवत के आलोक में, कि भगवान के साथ भक्तों का क्या संबंध। जहां वे इस तरह गुण गाते हैं, इस तरह आसक्त हैं गोपीजनों से, लताओं से, इस पृथ्वी से, और केवल चरणों का स्पर्श आदि पाने से वे धन्य हैं, तो फिर जिनका संबंध है श्रीकृष्ण से, जो श्री कृष्ण को अपना प्रिय मानते हैं, सेव्य मानते हैं, प्रियतम मानते हैं, उनका कैसे विछोड़ हो सकता है, कभी संभव ही नहीं। भगवान के धाम में ये सब चीज नहीं है, वहां स्वरूप शक्ति का विलास है केवल, माया शक्ति के राज्य में यहां पर जीवों का श्री कृष्ण से उच्चाटन होता है, और वे सब श्री कृष्ण के द्रोही बनते हैं। लेकिन अप्राकृत जगत में सभी भगवान के प्रिय हैं, वहां के मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, जहां की धरती, जहां की तृण लताएं विरुद्ध, जहां के खग मृग, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वारा पंच पुरुष भगवान के धाम का परिचय दिया जा रहा है, उनकी लीला को खोला जा रहा है, इसको उद्घाटन कहते हैं। अभी तो गोचारण लीला का ये प्रथम पन्ना है, ये 8 श्लोक पूरा हुआ है 15वें अध्याय का। आप प्रवेश कर रहे हैं वृंदावन में, किस तरह भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में लीला करते हैं, तो हम लोग भागवत के श्लोकों से इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, गा सकते हैं। तो आचार्यों के, विशेष करके श्रीपाद सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी तथा विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर की टीका के आधार पर मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूं, और वास्तव में यह हमारा साना है, ये हमारी पर्सनल साधना है भागवत कहना, और आप भक्तों के बीच मुझे बहुत आनंद आ रहा है। आप भी उसी पथ के पथिक हैं जिस पथ पर हम पीछे पीछे चल रहे हैं, साथ में हमें चलना है, कृष्ण भावना को बढ़ाना है। श्रील प्रभुपाद जिसका नाम ही दिया है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, यही है कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण के विषय में सुनना। और कृष्ण का मतलब कृष्ण अपने धाम के साथ, अपने परिकल के साथ, अपनी लीला के साथ है, पूरा कृष्ण का मतलब केवल अकेले बांसुरी बजाते हुए नहीं होता है, कृष्ण का अर्थ है अपनी अनंत शक्तियों के साथ। तो आगे भी सुनेंगे भगवान किस तरह शिखाओं के साथ विहार करते हैं, और किस प्रकार उन्होंने वेणु का वध भगवान श्री बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया और दूसरे स्टिंग में हम सुनेंगे। हरे कृष्ण जय श्री भगवत की आरती करेंगे। आज सवेरे भी कर लीजिए, कल से शाम को आरती करेंगे। आरती आई।